मीरा की कविता। मीरा मध्यकालीन भक्त कवयित्री हैं। उनकी कविता में भक्ति भावना की अभिव्यक्ति हुई है, लेकिन वे मध्यकालीन सामंती व्यवस्था की पीड़ित नारी भक्त कवयित्री है। इस पीड़ित नारीत्व को भूलकर उनकी कविता को हृदयंगम नहीं किया जा सकता। मध्यकाल का पुरुष कवि भक्त होने के लिए जाति पाति धन धर्म बड़ाई छोड़ता था तो स्त्री को लोक लाज कुल श्रृंखला तोड़नी पड़ती थी। यह श्रृंखला मीरा की कविता में बहुत महत्वपूर्ण है। वे भक्ति भावना के अभिव्यक्ति करते समय सुंदर से सुंदर दृश्य का, गिरधर नागर की मोहकता का चित्रण करते समय भी इस श्रृंखला में बधे होने की अनुभूति को व्यक्त करती हैं। मीरा की रचनाओं में लोक लाज कुल को तोड़ने की बात बहुत बार आई है। यह कारण नहीं, यह उस बंधनग्रस्त मध्यकालीन नारी मन की अभिव्यक्ति है जिसके विषय में तुलसी ने लिखा था, विधाता ने जो नारी को क्यों सिरजा, उस पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। कत विधि सृजि नारी जग माही, पराधीन सपने में सुख नाही। तुलसी नारी पराधीनता का कारण संभवतः न समझते रहे हों, लेकिन वह पराधीन है और उसे सपने में भी सुख नहीं मिलता, या देखते और महसूस करते थे। मीरा ने कृष्ण के प्रति प्रेम का जो चित्रण किया है वह ऐसी नारी का चित्रण है जिसके प्रेम में समाज कदम कदम पर बाधा पहुंचाता है। वह मीरा को बरजता है, अटकता है और जब मीरा नहीं मानती तो उन्हें भटकी या बिगड़ी घोषित कर देता है। थारो रूप दीख्या अटकी, कुल कुटुम्ब सजन सलक बार बार हटकी। मीरा की भावना और समाज की नारी की भावना है जहां नारी अपने प्रेम की अभिव्यक्ति सहज तौर पर नहीं कर सकती। इस वर्जनापूर्ण समाज में मीरा के प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे हुई? मैं अपने घर में खड़ी थी, मोहन आ निकले, उनका चंद्रमुख प्रकाशित था, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सभी कुटुंब ने बरजा बनाकर बोल बोला, चंचल नयनों ने अटक नहीं माना, वे पराए हाथ बिक गए। किसी ने भला कहा, किसी ने बुरा, सब शीश पर चढ़ा लिया। माँ ठाड़ी घर आपणे, मोहन निकलिया आए, बदन चंद प्रणासता, मंद मंद मुस्काए। सकल कुटुंब बरजता, बोलिया बोल बणाए, रेड़ा चंचल अटकणा माड़िया, पर हाथ गया बिकाय। भलो कहिया काय, कहिया बुरोरी, सब लया शीश चढ़ाए। मीरा की कविता में बाधक स्थितियों और उन्हें पार करके प्रिय से मिलने की इच्छा का चित्रण अनेकश मिलता है। घर के चार दीवारी में जकड़ी हुई वर्जित भावना जैसे बंधनों को तोड़कर बाहर निकल आना चाहती हो। हेली मासू हर बिन रहियो न जाए, सांस लड़े मेरी ननद खिजावे, राणा रहे रिसाए, पहरो बिराख्यो चौके बिठाइयो, ताला दियो जड़ाए। मीरा की यह पंक्ति भी प्रसिद्ध है। गली तो चारों बंद हुई है, मैं हरिसो मिलो कैसे धाए। घर में ताला लगा है, पहरा बैठा है, गली के दरवाजे बंद हैं, पीर से मिलना कैसे हो। मीरा के यहाँ स्थिति यह प्राय ऐसी मिलती है कि वे घर में ही रहती हैं, बाहर प्रिय दिखलाई पड़ता है, वे खुद उससे नहीं मिल सकती। प्रिय छोड़कर चला गया है, वे उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं, वह स्वयं प्रिय के पास पहुंच नहीं सकती। ऊपर से सास ननद और लोग भला बुरा कहते हैं, यह दर्द कोई और समझ नहीं सकता, वही समझेगा जब स्वयं घायल हो। यह सब स्थिति ठेठ मध्यकालीन भारतीय नारी की है। मीरा भक्त थी लेकिन नारी भी थी। वो भगवान के पास अपने नारीत्व को छोड़कर नहीं, उसके साथ जाती हैं, अपने देशकाल की सामान्य नारी स्थिति के साथ जाती हैं। यह अपनी भावनाओं की प्रामाणिकता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। मीरा अपने घर में रहने पर विवश है, ऐसी स्थिति में किसी प्रकार दूर से प्रिय को देखने की इच्छा की पूर्ति संभव है। आंखें शरीर से काफी दूर इधर उधर जा सकती हैं, शरीर विवश हो तो भी आंखें तृप्त हो सकती हैं। हमारी जवान पर ताला पड़ा हो तब भी आंखें बोल लेती हैं। हम अपना दुख न कह पाएं, आंखें कह लेती हैं। आंखें विवश और प्रतीक्षातुर व्यक्ति का बहुत विश्वसनीय साधन है। मीरा की कविताओं में प्रतीक्षातुर आहत नयनों का बहुत चित्रण है। घर में ही रहने के लिए विवश बाहर दौड़कर प्रिय से न मिल सकने वाली नारी की आंखों का वर्णन साहित्य में अकारण नहीं। नयनों की चंचलता आतुरता के भी सामाजिक और सामाजिकता से जुड़े व्यक्तिगत वास्तविक कारण हैं। प्रिय से मिल न पाने वाली नारी के लिए आंखें बहुत बड़ा वरदान है। मध्यकाल की और आधुनिक काल की भी सामान्य नारी स्थिति की भावनाओं को व्यंजित करने वाली कविता में नयनों की चेष्टा बहुलता का चित्रण लगभग अनिवार्य है। बसिया मारे अड़ेड़ मानंदलाल, पद संख्या 3। तनक हरि चितवा मारी ओर, हम चितवा थे चितवो उड़ा, हरि हमड़ो बड़े कठोर, पद संख्या 5। मारे अड़ेड़ा निपट बंकट छब आटंक, पद संख्या 10। आलेरी मारे अड़ेड़ा बाण पड़ी, कबरी ठाणी पंथ निहारा, अपने भवन खड़ी, पद संख्या 14। निशदिन जोवा बाट मुरारी, कबरो दर्शन पामा, पद संख्या 69। प्रतीक्षातुर व्यक्ति के लिए नयनों की ही तरह श्रवण की भी बहुत कम की काम की इंद्रिय है। घर में रहकर अपने दरवाजे घर पर खड़ी प्रिया अपने प्रिय को देख सकती है, उसकी बोली सुन सकती है। प्रिय यदि वंशी बजाता हो तब तो बहुत दूर से भी वंशी ध्वनि सुन सकती है। कभी कभी श्रवण नयनों के स्थानापन्न हो जाते हैं। कहते हैं सूरदास ने कृष्ण की बांसुरी की महिमा इसलिए भी बहुत गाई है क्योंकि वह देख नहीं सकते थे। नयनों के विषय को उन्होंने श्रवणों का विषय अधिक बनाया। भागवत में गोपियों को वेणु ध्वनि में जो इतना तल्लीन चित्रित किया गया है उसका भी बहुत बड़ा कारण भारतीय नारी की वह विवश स्थिति है जिसे गोपियों के द्वारा प्रकट किया गया है। गोपियाँ भी लोकलाज कुल की मर्यादा उसी प्रकार तोड़ती हैं जिस प्रकार मीरा। श्रवण और नयन दोनों कृष्ण की आवाज, वंशी की ध्वनि एवं उनका रूप सुनने तथा देखने को आतुर रहते हैं। यह और बात है कि श्रवण एवं नयन सुन देख कर पहले से अधिक चतुर हो जाते हैं। सौंदर्य हमें विक्षुब्ध करता है। सौंदर्य का प्रत्येक विषय अमूर्त सौंदर्य का प्रतीक बनकर रह जाता है और हमें अरूप की ओर उन्मुख कर देता है। यह अरूप भावलोक में रूपायित होता है। जमुना किनारे काना धेंद चरावा, वंशी बजावा मिठा वाणी, मिंद्रावण माधेण चरावा, मोहन मुरली वालो, वंशी बजावा कान्हा संगलिया बलबीर। घर की चार दीवारी में बंद घुटने वाली स्त्री को इच्छित रूप देखने का अवसर जितना ही कम मिलता है देखने पर उसका प्रभाव उतना ही तीव्र होता है। प्रभाव की तीव्रता का प्रमाण रूप की विशिष्टता यानी चित्रात्मकता है। ऐसी चित्रात्मकता प्राय स्थिर नहीं गत्वर होती है। गत्वर या सक्रिय बिंब स्थिर बिंबों से अधिक विश्वसनीय अतः प्रभावशाली होते हैं। मीरा ने कृष्ण का जो चित्र खींचा है वह कल्पित है। कृष्ण की वेशभूषा पीताम्बर मोहनमाला वैजयंती माला मुरली आदि तो उन्हें परंपरा से प्राप्त हुई थी लेकिन उनकी चेष्टाएँ आदि का जागतिक आधार होगा। कृष्ण का परंपरागत चित्र तभी मीरा के अनुभव से जुड़ सका होगा। मीरा ने कृष्ण की जो रूप माधुरी अंकित की है वह विशिष्ट और काफ़ी मादक है। कृष्ण को स्थिर रूप में कम चेष्टाशील रूप में अधिक चित्रित किया गया है। इससे रूप चित्रण में नाटकीयता आ गई है। नाटकीयता से यहाँ तात्पर्य अभिनयता से है। अर्थात मीरा ने कृष्ण को जिस रूप में चित्रित किया है उसका अभिनय किया जा सकता है। इस नाटकीयता का द्वंद्व रूप से प्रभावित होने वाली नारी मन में होगा। आकर्षण कृष्ण का रूप नारी की घुटती हुई जिंदगी की क्रूरता के विरुद्ध स्थित होगा। मीरा की प्रेमाशक्ति का आलंबन जो कृष्ण रूप है जिसमें उनकी लोभी नायक नयन अटक फिर वापस ना आ सके यानी उसी रूप में संलग्न रह गए उसका अनुभव मीरा को जिस परिस्थिति में हुआ वह दृष्टब्द है। माँ ठाणी घर आपड़े मोहन निकलिया आए। एक अन्य स्थान पर मीरा ने लिखा कबरी ठाणी पंथ निहारा अपने भवन खड़ी। मीरा ने प्रिय के नक्षिक सौंदर्य को रूप रूप से देखा। वे ललक ललक रकुलाने लगी। यदि बाहर निकलकर उससे मिल सकती तो ललक ललक कर अकुलाने की तीव्रता इतनी सघन न होती। यह सघन संवेदन है इसीलिए चित्र इतने विशेष रूप से हृदय में अंकित हो गया। बदन चंद परगासता मंद मुस्काय, पद संख्या 13। मोर मुगट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक सोहा भाल, मोहन मूरत सामर सूरत अड़ेड़ा वड़या विशाल, अधर सुधारस मुरली राजा उर्वैजंती माल, पद संख्या 3। गहे द्रुम डारी कदम की ठाड़ो मृदु मुस्काय मारी और हासियो पीताम्बर कट काछनि काछे रतन जटिल माथे में कुट कास्यो। पतसंख्याठ हे मा बड़ी बड़ी अखियन वारो सांवरो मोमन तन हेरत हाँसी के भव कमान बान बाके लोचन मारत हेरे काशी के। पद संख्या 7। इस रूप से आकृष्ट होकर मीरा घर से बाहर निकलने पर विवश हो गई थी। कृष्ण गली में से निकल जाते हैं, घर में आते नहीं। उन्हें देखे बिना मीरा घर में कैसे पड़ी रहे। मीरा तो गिरधर बिन देखे कैसे रहें घर बसी के। घर से बाहर निकलने के कारण ही उन्हें खलों का कोप भाजन बनना पड़ा था। यह रूप भगवान का है, किसी अलौकिक पुरुष का नहीं। यदि मीरा को भगवान के रूप की पूजा करनी थी तो वह घर में रहकर यह सब कर सकती हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति न होती। लेकिन मीरा भगवान का भजन भी करना चाहती थी और साधु संगति भी। इस साधु संगति के कारण ही राणा को क्रोध आया होगा। इससे प्रकट होता है कि मीरा के भक्ति भावना उतनी वैयक्तिक या एकांतिक नहीं थी जितना कि प्रायः समझ लिया जाता है। लोगों का ध्यान इस ओर कम गया है कि तुलसी कबीर के समान मीरा में भी दुष्टों और भक्ति विरोधियों के प्रति तीव्र घृणा का भाव है। फिर वह विरोधी चाहे राणा ही क्यों न हो, मीरा ने मुक्तक रचे हैं, वे आत्मनिवेदन करने वाली कवियत्री हैं, लेकिन भक्ति उन्होंने काफी सामाजिक बना दिया था। उन्होंने लिखा, मूर्ख लोग सिंहासन पर बैठकर राजा बने हैं, विद्वान दर दर भटक रहे हैं, राणा भक्तों का संहार करता है। मूर्ख जन सिंह स्वर्ण राजा पंडित फिरता द्वारा मीरा रे प्रभु गिरधर नागर राणा भगत संहारा। मीरा केवल वीराणी होती किसी रीतिकालीन नायिका की भांति तो वे सिंहासनासीनों को मूर्ख कहने की आवश्यकता न अर्जित कर पाती। निसंदेह मीरा ने आत्मनिवेदन किया है, लेकिन उनका आत्म सामाजिकता और संघर्ष युक्त है, इसीलिए वह इतना प्रभावशाली है। सच्चाई की बहुत बड़ी पहचान यह है कि वह संघर्ष और विरोध आमंत्रित करती है। यह संघर्ष मीरा ने भी झेला था। निर अंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। मीरा का काव्य विरह प्रधान है। जगत सुख यूं भी मीरा को कब ही मिला था, कृष्ण से मिलने की आतुरता ही उनके काव्य का प्रधान विषय है। इस आतुरता की अभिव्यक्ति मुक्तक गेय पदों में ही संभव थी। मीरा का विरह का रूप प्रधानतः परीक्षा है। जिस प्रेतम को रूप ने उन्हें विह्वल कर रखा है वह मिलता नहीं, वह आने का वादा करके चला गया है, नेह की नौका मझधार में डालकर चला गया, वह लगन लगाकर चला गया है, उसने अपना मन काट कर लिया है। मीरा उसे कभी जोगी भी कहती है। जोगी घर से विरक्त होकर चला गया है, वह किसी का मित्र नहीं। उसे खोजने के लिए मीरा जोगन हो जाना चाहती है। उनकी सूरत मन में बसी है और उसके बिना रात को नींद नहीं आती, उसके बिना जगत निसार है। मीरा बार बार उससे घर आने की प्रार्थना करती है, वह आता नहीं। भक्त के लिए वह प्रीतम भगवान है। इस प्रीतम का रूप मीरा के यहाँ इतना आत्मीय है कि लगता है जैसे प्रिय विषयक उनकी कल्पना ने यथार्थ का रूप धारण कर लिया हो। जो मीरा का इतना आत्मीय हो गया है वह रूप एवं निराकार हो भी तो जिन गुणों स्थितियों का आरोप भगवान पर किया गया है वह किसी परिचित व्यक्तित्व का ही होना चाहिए। संभावना इसी बात की है कि या तो वह परिचित व्यक्तित्व उदात्तीकृत होकर भगवान के रूप में पर्यवसित हो गया है या भगवान पर ही उसके गुणों का आरोप कर दिया गया है। जो भी हो, परिचित स्थितियों एवं गुणों से युक्त प्रियतम का रूप मीरा के यहाँ निश्चित हो गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि मीरा की विरह अनुभूति भी परिचित एवं लोक सामान्य हो गई। इससे मीरा की अभिव्यक्ति विश्वसनीय एवं स्वाभाविक हो गई है। स्वाभाविकता परिचित और विश्वसनीय स्थितियों से निर्मित होती है। इन परिस्थितियों का आधार अपरिचित एवं अरूप नहीं हो सकता। मीरा की रचनाओं का जो सीधा प्रभाव पड़ता है उसे निश्चल और अकुंठ अभिव्यक्ति कहा जाता है। वह इन स्वाभाविक अभिव्यक्तियों स्थितियों की अभिव्यक्ति का ही दूसरा नाम है। इसीलिए इस अभिव्यक्ति का इतना सीधा प्रभाव पड़ता है। इस स्वाभाविकता का प्रतिफलन गेय पदों की रचनात्मक संगति और अन्विति में हुआ है, जो इस विधा के उत्कर्ष का निर्णायक तत्व है। इससे पंक्तियों में स्पष्टता और स्थितियों की तर्कसंगत परंपरा आ गई है। यह अनुभूति की उपज है और अनुभूति उत्पन्न करती है। निरलंकृति इस अभिव्यक्ति की अनिवार्यता है। यह निरलंकृति गीत गोपिंद कबीर विद्यापति सूर, तुलसी, मीरा सभी के गेय पदों की विशेषता है। जहां यह निरलंकृति नहीं रहती, वहां गेय पदों का उत्कर्ष क्षीण हो जाता है। याद रखिए, अनुभूति एक प्रक्रिया है, इसका निश्चित समाधान होता है। यह विधान संगति के बिना नहीं निर्मित होता। इस प्रक्रिया में कहीं कुछ छूट जाता है तो वह सहृदय के चित्त में जुड़ जाता है। उत्कृष्ट स्थलों पर तो कुछ जरूर छूट जाता है, कुछ यानी रचना प्रक्रिया के दृष्टि से अनावश्यक। छूट जाने से अनुभूति की सघनता अभिव्यक्त हो जाती है। यह संक्षिप्तता या अत्यंत अनिवार्य कथनता सीधा एवं अचूक प्रभाव उत्पन्न करती है। अभिव्यक्ति ऐसे स्थलों पर परम सफल होती है। मध्यकालीन भक्त कवियों की रचनाएं सरल हैं और हृदय पर सीधी चोट करती हैं। वे भावनापूरित हृदय की विशाल विवश अभिव्यक्ति हैं तो श्रोताओं पाठकों को सीधे प्रभावित करती हैं। हेरी मदा तू दर्द दीवाणा मारा, दर्द न जानिया कोई, घायल रीगत घायल जानिया हिड़ो अगम सजोय, जौहर की गत जौहर जानिया, क्या जानिया जिड़ खोय, दर्द के मारिया दर दर डोलिया, बैद मिलियाड़ा कोय, मीरा री प्रभु पीर मिटांगा, जब वैद सवारो होए। मीरा की ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ बहुत सीधी सादी हैं, लेकिन इतनी प्रभावशाली क्यों हैं? दर्द दीवाना के दर्द को कोई नहीं जानता, यही बात इस पद में कही गई है। पद की पहली पंक्ति में कहा गया कि दर्द दीवाना का दर्द कोई नहीं जानता, दूसरी पंक्ति में कहा गया घायल की गति घायल ही जानता है। दर्द दीवाना का दर्द अनुभूति है, अनुभूति अनिर्वचनीय है। सामान्यतः शब्द संकेतिक या सूचित करते हैं, वे अनुभूति की जीवंत थरथराहटों को ज्यों का त्यों संप्रेषित नहीं करते। संप्रेषित करने का मतलब यह कि सुनने वाले के मन में वही विक्षोभ नहीं उत्पन्न कर पाते जो कहने वाले के मन में है। मनुष्य ने बहुत साधना करके जिस भाषा का विकास किया है, उसके शब्द जीव जगत को अमूर्त करते हैं। इसलिए शब्द विचारों के समर्थ माध्यम है, अनुभूति के नहीं। मध्यकालीन कवियों ने शब्दों की इस असमर्थता और शब्दों का ही सहारा रखने वाले काव्य साधना के इस द्वंद्व को बहुत अच्छी तरह व्यक्त किया है। कबीरदास ने कहा, भाई मुझसे बोलने के लिए क्यों कहते हो, बोलने से तत्व नष्ट हो जाता है, विकार बढ़ता है, लेकिन क्या किया जाए, बोलने के अलावा विचार करने का कोई रास्ता भी तो नहीं, इसलिए बोलना पड़ता है। बोलना का कहिए रे भाई, बोलत बोलत तत्त नसाई, बोलत बोलत बढ़े विकारा, बिन बोले क्या करहें विचारा। तत्त का अर्थ है अनुभव में समाया हुआ सत्य। तुलसी ने लिखा, कवि को तो अर्थ और आखर का ही सहारा है, उसे निश्चित शब्दों के निश्चित अर्थ से अनुभूति की अभिव्यक्ति करनी होती है। नट ताल गति के ही सहारे नाचते हैं, अब जो शब्दों से व्यक्त नहीं हो पाता उसका क्या हो। शब्द और ताल गति अनुभूति संपदा की पूर्णता को नहीं, उसकी अपूर्णता को ही प्रस्तुत कर पाते हैं। इसकी कचोट कवि को न होगी तो किसी होगी। कभी ही अर्थ आखर बलु सांचा, अनुहरि ताल गते हैं भटु नाचा। दर्द दीवाना मीरा अपनी अनुभूति के विषय में केवल यही कह पाती है कि उसे कोई जान नहीं पाता। दर्द को मीरा जिस प्रकार अनुभव कर रही है, उसे और कोई अनुभव नहीं करता। जब और कोई उस दर्द को मीरा की तरह अनुभव नहीं करता, तो मीरा उसे प्रकट भी करें तो क्या होगा। इसलिए मीरा दर्द की पहचान निषेधात्मक रीति से करती हैं। यह दर्द वह है जो लोग अनुभव नहीं कर पाते, अनुभूति सूचित नहीं की जा सकती। उपनिषद तक नहीं कर पाए थे कि इसीलिए उन्होंने भी यही निषेधात्मक पद्धति अपनाई थी। नेत नेत कला अनुभूति को बिंब और नाटकीयता के द्वारा सूचित नहीं चित्रित करने का प्रयास करती है। मीरा जब अनुभूति के विषय में कह रही हैं कि इसे लोग जान नहीं पाते, तो वे इसकी पहचान की ही बता रही हैं। लेकिन अगली पंक्ति में मीरा ने दूसरी बात कही है, मेरे दर्द को वह जान लेगा जो खुद मेरी तरह दीवाना होगा। घायल की पीड़ा को अनुभूति को घायल जान लेगा। मीरा ने कहा घायल जान लेगा क्योंकि उसके हृदय में अगम का संयोग रहा है, यह अगम अनुभूति है। पहली पंक्ति में मीरा इस दर्द का चित्रण करने के चक्कर में नहीं पड़ती, वह उस दर्द की पहचान पाठकों श्रोताओं को यह कहकर बताती है कि वह बिना अनुभव के नहीं जाना जाता। अनुभूति अनुभव की स्थिति है, उस स्थिति में जो होगा उसे ही उस दर्द की अनुभूति होगी। वह अनुभूति को स्थिति से जोड़ती है। ऐसा करके वे पाठकों श्रोताओं को उनके अनुभवों की स्मृति के माध्यम से अपने दर्द को संप्रेषित भी कर लेती है। यह जो पाठकों श्रोताओं की अनुभूतियों को स्मृति के माध्यम से अपनी अनुभूति की पहचान बना लेने की शैली है, उससे मीरा का दर्द लोगों के दर्द से जुड़ जाता है। पहली पंक्ति का निषेध दूसरी पंक्ति का विधेय बन जाता है। बिना चित्रण के चित्रण उपस्थित होता है, लेकिन वह इन दो पंक्तियों में नहीं है। इन पंक्तियों के माध्यम से यह पाठकों श्रोताओं के चित्त में उदित होता है। मीरा के तथा अन्य महान मध्यकालीन भक्त कवियों के निरलंकृत काव्य की सरलता और अचूकता का यही नुस्खा है।